Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, उम्मीद की कश्ती को कभी भी डुबोना नहीं चाहिए। उम्मीद एक ऐसा हथियार है जिससे आप किसी भी जिंदगी की जंग से जीत हासिल कर सकते हैं। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
ओम शांति।
वेलकम टू आवर शो भाई जी।
नमस्कार
डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे थे सुसाइड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस तरह से उनके रिलेटिव्स को और रिएक्ट करना चाहिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि किस तरह से डॉक्टर्स का कौन सा रोल होता है ऐसे में, उन्हें एम्पथाइज करने की ज़रूरत है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्पिरिचुअलिटी का भी उतना ही बड़ा रोल है?
बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी का शायद बड़ा, उससे ज़्यादा रोल है।
अच्छा,
जो फैमिली मेंबर्स करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, उससे भी बड़ी बात स्पिरिचुअलिटी कर सकती है।
अच्छा,
आपने जो शुरुआत की वहीं से शायद स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत होती है।
अच्छा,
क्योंकि ये कहना इजी है कि उम्मीद की कश्ती को डुबोना नहीं चाहिए
जी,
तो प्रैक्टिकल में नहीं होता है।
बिल्कुल।
उसके लिए और एक बात है, इंग्लिश में है, हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि होप कहते हैं, नहीं आशा की किरण, HOPE, होप कहते। होप का अर्थ है, उसको अगर आप डिवाइड करो तो होल्ड ऑन प्रॉब्लम एंड्स, HOPE, होल्ड ऑन प्रॉब्लम एंड्स, अर्थात कि आप होल्ड ऑन करेंगे, आप पकड़ के रखेंगे तो समस्याएं समाप्त हो जाती है।
अच्छा,
बस इनफ समय के लिए आपको होल्ड ऑन करना है ना। हम थक जाते हैं, है ना, हम हार जाते हैं।
अच्छा,
ये सारी बात यही है। सुइसाइड क्यों होते, क्योंकि हार गया व्यक्ति।
बिल्कुल।
अगर आप हारे नहीं, आपने होल्ड ऑन किया, तो प्रॉब्लम का अंत होना ही होना है। और आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन सकते हैं। समझो कि भी समस्या के बीच में भी आप जूझते रहो
जी,
तो आपके लिए औरों के लिए आप एक बहुत बड़ा एग्जांपल है।
करेक्ट।
जैसे उदाहरण के रूप में कि भाई कोई एक आम घर का बच्चा
जी,
है ना, फर्स्ट आ जाए सारे बॉम्बे में तो भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन एक झुग्गी झोपड़ी का कोई व्यक्ति फर्स्ट आ जाए लड़का, तो 10 गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
बिल्कुल।
लोग उसको महत्व देते हैं
जी।
तो ऐसे ही समस्याओं के मध्य आप स्थिरता को रखो, समस्याओं के मध्य कुछ आप अच्छा करो तो लोग आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, है ना। वो एक शुरुआत है। फिर अगर नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें कि कैसे स्पिरिचुअलिटी हेल्प करेगी, कि आत्मा का गुण ही है आनंद स्वरूप।
ओके।
कहते ना, आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है
जी।
तो वह तो मेरा स्वभाव ही है ना? अगर मैं बाह्य चीजों में आनंद नहीं ढूंढ रहा हूं तो निराश होना ही नहीं है। किसने मेरी टीका कर दी, बिजनेस में बड़ा लॉस हो गया, मेरी लाइफस्टाइल सारी उथल पुथल हो गई, है ना। अब बड़े फ्लैट में रहते थे, शायद आपको चौल में रहने को जाना पड़ा, या कुछ बहुत बड़ी बीमारी आ गई। परंतु अंदर में जब यह बात आती है आध्यात्मिकता से कि मैं आत्मा हूं और मैं आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप हूं, तो फिर तो निराशा की बात ही नहीं। और एक चीज मदद करती है, एक प्रकार से तो आम भी है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि भी कैसे, इस पर भी अगर हमारे दर्शक अच्छे से सोचे, है ना, तो जिनको भी डिप्रेशन हो रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, वह उससे बच सकते हैं। एक व्यक्ति बहुत डिप्रेस था, इट्स अ रियल स्टोरी है, मेरे पास ही वो पेशेंट थे
जी।
वो बहुत डिप्रेस था, उसने प्लान कर लिया था कि ऐसे मरूंगा, परंतु थोड़े दिन पहले ही किसी ने सुइसाइड किया और उसकी मृत्यु हो गई।
ओके।
और वह व्यक्ति उसकी स्मशान यात्रा में गया।
अच्छा।
जब उसकी स्मशान यात्रा में गया तो लोग जो उस जो व्यक्ति मरा था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे।
अच्छा।
उल्टा सीधा बहुत कुछ बोल रहे थे कि अरे खुद तो छूट गया लेकिन पत्नी का सोचा वो कैसे चलाएगी, है ना। वो तो शायद उसको लगा होगा कि मेरे दुख खत्म हो गए लेकिन बच्चे कैसे बड़े होंगे, उसका विचार किया, है ना। कितना कमजोर था, जो भी बोलते हैं ना ऐसा लोग आपस में बातें कर रहे थे, उसने सुना ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। मैं कभी नहीं करूंगा अभी तो, अगर मैं मरा तो मेरे बारे में भी लोग ऐसा ही बोलने वाले हैं, उससे अच्छा ये प्रॉब्लम तो कम है।
करेक्ट,
वर्तमान में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बहुत कम है
जी।
तो नहीं, उसी से उसको एक आशा की किरण दिखा दी, उसने निर्णय कर लिया कि मुझे मरना नहीं है।
बिल्कुल।
और एक बात है, ये सचमुच रिसर्च स्टडी है
जी।
ना आध्यात्मिकता तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि भी आपके कर्म बनेंगे ना, कर्मों का हिसाब है और वो कोई मुक्ति नहीं है आपको। जो कर्मों का आज जो समस्याएं हैं वह कर्मों के कारण है, और आप मर भी गए तो कर्म आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, वो तो अगले जन्म में भी आपको चुक्त करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है, परंतु एक सचमुच साइंटिफिक रिसर्च हुई है, आपने भी सुना होगा, हमने भी ये चर्चा की है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस जिसको कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, कि जो लोग मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, है ना, एक बार तो उनको मृत घोषित कर दिया गया था लेकिन फिर से वो जीवित हुए और फिर वो अपना अनुभव सुनाते कि कैसे मैं टनल से गुजरा, एक लाइट को मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे करीब 10,000 से अधिक किस्से रिकॉर्डेड है कि जिसमें सब में अच्छा अनुभव है, जिनको भी अनुभव हुए सभी के अच्छे है कि भी मुझे शांति मिली, परमात्मा को मिला, परमात्मा ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ एक ऐसे भी किस्से है, थोड़े से ही है, कि जिसमें लोगों ने सुइसाइड किया था
जी।
और वो वापस जीवित हुए और फिर उन्होंने जब अपना अनुभव सुनाया, जब उनको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए तो कहते वो सारे के सारे बहुत दुखमय है।
अच्छा।
कि उसमें उनको लगा कि बहुत दुख हुआ कि भगवान ने भी हमको प्यार नहीं दिया, भगवान ने भी इस दृष्टि से देखा कि जैसे हमने कुछ बुरा काम किया हो ना, कि उसके बाद हमें अच्छा नहीं लगा, जैसे शरीर से बाहर आत्मा निकली तो हमें सचमुच दुख अनुभव हुआ
क्योंकि तो, तकलीफ के द्वारा उनकी हाँ, शरीर छूटी है ना,
वो भी और कर्म अच्छा नहीं था।
अच्छा।
जो कर्म था वो अच्छा नहीं था, इसलिए खुद को भी अच्छा नहीं लगा और पूरा एक्सपीरियंस भी दुखमय था।
बिल्कुल।
तो यह समझना चाहिए, है ना, दर्शकों को भी ये कहूंगा मैं कि भी ये अच्छे से समझो कि अभी वर्तमान में समस्या है, अब बीमार है, आर्थिक समस्याएं, बदनामी हुई है, परंतु फिर भी अभी भी उसका सॉल्यूशन है, आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन मरने के बाद तो उल्टा बुरा है, वो समाधान नहीं है कि हम कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल कि मे बी हमारा घर है, एक हमको लगे कि आर्थिक प्रॉब्लम हुआ है, ये घर बेच दो और छोटा घर ले लो, तो हमारे 5 लाख या 10 लाख बच जाएंगे, ना ना, तो वो एक सॉल्यूशन है।
करेक्ट।
ना, परंतु ये सॉल्यूशन नहीं है। अगर सुइसाइड करने के बाद अच्छा होता कुछ तब तो ठीक है, लेकिन कुछ अच्छा होना नहीं है, ऐसे भी अच्छा नहीं होना है। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के भी बुरे ही अनुभव है।
ओके।
है ना, इसलिए इससे भी एक पक्का कर लेना चाहिए कि भी कुछ भी हो जाए मैं सहन करूंगा, तकलीफ उठाऊंगा, रास्तों को ढूंढूंगा, है ना, औरों की बातों को इम्पोर्टेंस नहीं देना है, लोग क्या बोल रहे हैं
जी,
है ना, मुझे तो बस अभी विस्डम को इकट्ठे करते जाना है, विवेक को, प्रज्ञा को बढ़ाते जाना है।
बिल्कुल।
जितना भी साल जीना है मैं प्रज्ञा को बढ़ाता जाऊंगा, उससे आपका कल्याण होगा।
बिल्कुल।
अन्यथा सुइसाइड करने से कोई फायदा नहीं
जी। जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, स्पिरिचुअलिटी में एक और एक नया पहलू आता है कि आजकल लोग कहते हैं कि भगवान को याद करने के लिए हमारे पास टाइम कहाँ है, हम पूरे दिन इतनी दिनचर्या में बिजी रहते हैं, इतने प्रेशर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आप हमें सजेस्ट करेंगे अगर तो ये बेहतर होगा कि किस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी ज़िंदगी का प्रैक्टिकल वे में उसको अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो वो कैसे लाएं।
अभी जो लोग कहते हैं कि भी टाइम नहीं है
जी,
मैं समझता हूँ वो उनका बहाना है।
अच्छा।
ये भी माना गया है कि जो लोग असफल है उनके पास टाइम नहीं है, परंतु जो व्यक्ति सफल है उसके पास सब चीज के लिए टाइम है।
ओके।
वो व्यक्ति के पास एक्सरसाइज करने का भी टाइम है, उसके लिए बच्चों के लिए भी टाइम है, है ना, सबके लिए टाइम। अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू मैंने कुछ समय सुना था, तो किसी ने कहा कि भाई हमने सुना है कि भी आप ये सब काम करते हैं तो आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं? तो उन्होंने तो सरल सा उत्तर दिया, सचमुच कुछ करते होंगे वह, परंतु उन्होंने कहा नहीं, बस टाइम पे काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं क्या करता हूँ भाई, टाइम पे एक्सरसाइज करनी है, है ना, टाइम पे सोना है, टाइम पे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम बिताना है।
okay.
बस वो ऐसा करना है तो कुछ नहीं,
बेसिकली टाइम को मैनेज करना है।
हाँ, या तो नहीं, मैंने तो भी कहना था कि भी सफल व्यक्ति पहले से टाइम को मैनेज करता है, जैसे हमारी जानकी दादी जी है।
जी।
आज हम लोग यहाँ पर आते हैं कहते बहुत बिजी हो गए, बहुत बिजी हो गए, मुरली सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन आश्चर्य होता है कि भी जानकी दादी लंदन जा रही है और सवेरे मुरली करा रही। तो कैसे कराया? क्योंकि उन्होंने टाइम को मैनेज किया, उसके पास तो बहुत ज्यादा, हमारे से 50 गुना ज्यादा काम है।
बिल्कुल।
लेकिन उन्होंने पहले से ही प्लान किया होगा कि मुझे जो भी काम करने हो कर लिए, निर्णय कर लिए, जिनको डायरेक्शन देने वो दे दिए, परंतु सवेरे जाने से पहले मुरली क्लास में जाना है।
बिल्कुल।
है ना, उनके पास टाइम है, तो इसलिए ये कहना गलत है कि टाइम नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत बार सुनाता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है बात, कि भी कैसे टाइम निकालना है, भी भगवान के लिए टाइम क्यों निकालिया, कैसे निकाले। एक राज्य में एक व्यक्ति कुछ बेच रहा था
जी।
वो जोर जोर से सेल्समैन की तरह बोल रहा था कि 1 का 23, 1 का 23। तो राजा ने सुना, राजा को लगा कि भी ये सभी को फंसा रहा है, 1 का 2 हो सकता है, 1 का 3 हो सकता है, 1 का 23 कैसे हो सकता है। तो उसने कहा कि उसको ऊपर बुलाओ। उसको ऊपर बुलाया, कहा देख सबको फंसा रहा है ना, सच बोल, कैसे क्यों फंसा रहा है, सच बोलेगा तो तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो फांसी पे चढ़ा दूंगा। उसने कहा नहीं नहीं राजा जी, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, 1 का 23। कहा कैसे 1 का 23? उसने कहा नहीं नहीं राजा जी, 100% 1 का 23 आप भी खरीद सकते हैं। क्या बेचता है? तो उसने कहा देखो राजा जी, मैं ये बेच रहा हूं कि तुम भगवान के लिए 1 घंटा दो तो आपके 23 घंटे सफल कर देगा।
वाओ।
देखो 1 का 23 हो गया है ना, तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई सचमुच है कि भाई भगवान के लिए 1 घंटा आप दो, वो आपके 23 घंटे जरूर सफल करेगा।
This is so beautiful. ये thought ही कितना provoking है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा भी realize करें तो कहीं ना कहीं भगवान से एक नया रिश्ता कायम हो जाएगा।
और बस बात यही है कि भी वो जो 1 घंटा देना है
जी,
ऐसा नहीं है कि भी हम सब भगवान से कुछ मांगे। एक्चुअली वो एक समय भगवान से संबंध जुटाना है।
ओके।
जो कहते हैं ना कि भगवान को मानना नहीं है, उसको जानना है, उसको पहचानना है
जी।
भगवान से संबंध जुटाना है, तो वो 1 घंटा भगवान को याद करे, उससे संबंध जुटाए, भगवान से शक्ति ले, और इतना अच्छा संबंध जुटाए कि जब भी जरूरत होगी तो वो आपको मदद करेगा तुरंत। और साथ साथ में पावर भी आ गई। अब जब 1 घंटा परमात्मा को याद करते तो इतने शांत हो जाते हैं, इतनी पावर आती है, फिर ऑटोमेटिक जो समस्या है उसको सुलझाने की शक्ति आ जाती है। एक विवेक भी आ जाता है समस्याओं को सुलझाने का
जी।
और बहुत सारी समस्याएं ऐसी है कि जिसमें हमें बाहर कुछ नहीं करना है, एक्चुअली उन समस्याओं में हमें अंदर कुछ करना है।
अच्छा।
ना, अपने आप को कुछ करना। देखो बाह्य से कुछ होता नहीं, ना, मेरा अभी का एक अनुभव है कि जैसा सबके साथ होता है वास्तव में, कि हम सबके पास मोबाइल है तो ना कई बार देखते हैं कि भी रास्ते में बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है
जी।
ना कई बार जब वो पावर बैंक आई ना, उससे पहले कई बार रास्ते में बैटरी डिस्चार्ज हो गई और है ना वो चार्जर खरीदना पड़ा। भी चार्जर खरीदा, कहीं पे उसको चार्ज किया फिर से
जी।
फिर ये पावर बैंक आ गई ना, तो मैं बहुत खुश हुआ, वंडरफुल कि भी पावर बैंक आ गई।
करेक्ट।
एक मोटी सी पावर बैंक खरीद ली कि भी जिससे ना 3 बार भी मोबाइल चार्ज हो जाए।
जी।
लेकिन देखा कि एक दिन दोनों डिस्चार्ज, वो पावर बैंक को भी चार्ज नहीं किया और फोन भी डिस्चार्ज।
ओके।
तब मुझे रियलाइज हुआ कि भी ये गैजेट्स काम का नहीं है, अपने आप को मैनेज करना है। हमें ना उसको 100% चार्ज नहीं करते थे, ये सोचते थे कि हो जाएगा, कि भी अभी तो 70% ये कोई बात नहीं चलेगा, है ना। सवेरे आलस कर दी, सवेरे उठे देखा कि 70% है, उसको 100% कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था।
करेक्ट।
लेकिन उसको किया नहीं। पावर बैंक का भी सोचा कि अभी बहुत थक गए, कल सवेरे करेंगे, है ना, तो वो भी ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली जो मैनेजमेंट जरूरी है वो अपने आप को मैनेज करना है।
जी।
ना, जब अपने आप को अभी मैंने लक्ष्य रखा कि दोनों 100% होने चाहिए।
बिल्कुल।
थक गए हैं ना तो भी सब जो मोबाइल भी चार्ज हो रहा है, पावर बैंक को भी 100% कर दो।
जी।
कहीं पे भी हुआ फिर से उसको करना है।
तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी बात है, इसे अगर हम भगवान के साथ जोड़े तो अगर हमारे अंदर में कितनी भी थकावट हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर उस पावर बैंक के साथ में अपने आप को कनेक्ट करके रखें तो हमेशा 100% बैटरी रहेगी और कभी भी हम टायर्ड नहीं होंगे।
वंडरफुल। वो भी एक बात है।
हाँ जी।
कि भी भगवान भी पावर बैंक है, और इससे ज्यादा जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि परमात्मा के लिए आप टाइम देंगे तो सेल्फ को मैनेज करना सीखेंगे।
अच्छा।
कि भी आलस नहीं आएगी, जो मैंने सारा देखा ना इसमें, ये भी वो आलस के कारण हम फोन को ही चार्ज नहीं करते थे। अगर फोन को ही जैसे ही मौका मिले 100% चार्ज रखो तो शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
बिल्कुल।
परंतु हम वो करते नहीं है
ना।
वहां कहीं ना कहीं अपने आप को, जैसे अपने थॉट्स को मैनेज करना, अपने आप को थोड़ा पुश करना कि ये भी इम्पोर्टेंट काम है, ये काम कर लो, ऐसा हम नहीं करते, इसके कारण दिक्कत होती है। तो ऐसे परमात्मा के लिए टाइम निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, उल्टा वो प्रायोरिटी होनी चाहिए।
अच्छा।
परमात्मा को टाइम निकालना कि भी ये सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। कोई व्यक्ति जब सारे दिन में अपॉइंटमेंट देता है तो कहता है ना कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
बिल्कुल।
देखना अच्छे लोग है, मैं भी अपने सेक्रेटरी को बोलता हूँ कि भी ये सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है, इसके लिए पूरी हमको तैयारी करनी है। तो ऐसे ही जो आप टाइम परमात्मा के लिए निकालते हो, ये सोचो कि सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है और सब सेकेंडरी है। तो वो टाइम आप जब भी देंगे 20 मिनट 25 मिनट भी, तो टोटली उनमें अब्सॉर्ब होना है, उनसे एनर्जी को लेना है।
तो इससे शायद हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी बदल कर पॉजिटिविटी की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे।
बिल्कुल। हाँ, विल पावर भी बढ़ेगा।
अच्छा।
नहीं, जो खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, वह होगा।
जी।
एक फुलफिलमेंट का अनुभव करेंगे, नहीं, जो अल्टीमेट है। फुलफिलमेंट अल्टीमेट है ना। एक कहा भी गया है कि लोग समझते हैं कि भी आईक्यू अच्छी होनी चाहिए।
जी।
है ना, तो कहते हैं आईक्यू तो अच्छी होनी चाहिए, परंतु आईक्यू से ज्यादा है ईक्यू, इमोशनल
क्वोशंट।
कि आईक्यू के कारण आपको अच्छा जॉब मिल जाता है, परंतु ईक्यू अच्छी होगी तो प्रमोशन मिलता है।
ओके।
या ईक्यू अच्छी होगी तो आप अच्छा बिजनेस कर लेते हैं।
जी।
परंतु कहते इससे भी आगे है कि एसक्यू अच्छी होनी चाहिए, स्पिरिचुअल क्वेश्चन।
ओ।
स्पिरिचुअल क्वेश्चन के कारण आप फुलफिलमेंट का अनुभव करते हैं।
जी।
नहीं तो जो फुलफिलमेंट है वो नहीं होती है।
तो साहब, जब हम बात करते हैं निराशा की या फिर होपलेसनेस की या फिर उस खालीपन की जो आजकल हमें बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग इससे ग्रसित होते जा रहे हैं, क्या स्पिरिचुअलिटी इससे बाहर निकलने में हेल्प कर सकती है?
डेफिनेटली। ये इश्यू है कि जब लोग सुसाइड करते हैं तो उनके फैक्टर भी अगर देखो तो नहीं, होपलेस हो गए हैं।
जी।
है ना, उनको कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है, अंदर में इतना पावर नहीं है। तो ये सब चीजें आध्यात्मिकता से आएगी।
अच्छा।
परमात्मा को याद करेंगे तो उससे आपको राह भी मिलेगी, एक शक्ति भी मिलेगी, है ना, आशा की किरण भी मिलेगी।
करेक्ट।
और सचमुच परमात्मा आपका साथी होगा। सुसाइड का ये भी कारण होता है कि लोगों को लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, अभी मैं अकेला हो गया, उससे अच्छा जिंदगी को अंत कर दूं। परंतु यहाँ पर ये भी मदद मिलेगी कि मैं अकेला नहीं हूँ, ना, परमात्मा मेरे साथ है ना, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आध्यात्मिकता तो बहुत बड़ा सहारा है।
बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी अर्थात भगवान जो है उनके साथ में अगर हमारी बैटरी हमेशा कनेक्टेड रहेगी तो ऑटोमेटिकली 100% बैटरी फुल हमेशा ही रहेगी और हमारे अंदर उमंग उत्साह की कभी भी कमी नहीं होगी, तो फिर सुसाइड की तो कोई बात ही नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति।
ओम शांति, नमस्ते।
दोस्तों, आज हमने क्या जाना, भगवान जो कि एक पावर बैंक है, अगर आप उससे कम्प्लीटली हमेशा कनेक्टेड रहेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बैटरी हमेशा 100% रहेगी और कभी भी आपके आसपास होपलेसनेस या फिर कोई भी तरीके का खालीपन आपको कभी भी ग्रसित नहीं कर पाएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।